हम पढ़ रहे थे आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय, दादा आनंद किशोर जी। जगत माता, अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता है, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी है वो सारे जगत की माता कैसे? जो शरीरधारी है वो जगत की माता कैसे? आध्यात्मिक पालना की निमित्त है। इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम है ओमरादे। कर्तव्यवाचक पूरा नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, संगीत की देवी, कला की देवी, हर वाणी की देवी, वाणी की देवी वागेश्वरी कहा जाता है उसे। तो माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार, उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमात्मा परमपिता शिव है, शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा जब वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्य को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। कब अवतरित होते हैं भगवान? सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुगी पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, तब जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब तब वो आता है। किस लिए? गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्य को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ में प्रवेश करके अवतरित होते। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्येश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनाकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों की, विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं। इस रूहानी सेवा से ही कलियुग की भ्रष्टाचारी सृष्टि पर आनंद किशोर दादा ने अपना अनुभव नहीं लिखा है, उनका अनुभव नहीं है, ये खाली वो कौन थी उसके बारे में लिखा है, अनुभव नहीं लिखा है। यह कलयुग की सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुग की श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि रखे हुए। तीन नदियां मुख्य है, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी कहाँ है? गुप्त है, और कहीं तो होगी ना, हरियाणा की धरती, हरियाणा से निकलती है, बीच में लुप्त हो गई वो, हरियाणा, फिर कौन कौन से है, कटर, हरियाणा के दो तीन, बठिंडा और उधर उधर से जाती थी, अभी नहीं है, पहले बहुत पहले, फिर वो बीच में लुप्त हो गई। वो भी उसकी बहुत सारी पौराणिक कथा है, वो क्यों धरती पर आई, उसने एक गलती कर दी थी, उसको ब्रह्मा या शाप मिल गया था। तीन नदियों, विष्णु, एक तो लक्ष्मी थी, एक गंगा थी और एक सरस्वती थी, तीनों ने एक दूसरे को शाप दे दिए थे, एक बार झगड़ा हो गया था तो तीनों का आपस में। हाँ, लक्ष्मी नदी का नाम नहीं, सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दिया तू जाके पौधा बन जा, तो जाके तुलसी बन गई धरती पर। तुलसी की पूजा होती है ना, तुलसी विवाह भी होता है विष्णु के साथ, तीनों ही विष्णु की अर्धांगिनी दिखाई है पहले। गंगा भी पहले तो वो कृष्ण के पास जाती है, पर कृष्ण कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी है राधा, उधर जाओ। इस तरह की जबरदस्त कहानी है। तो तीनों का एक बार विष्णु कहीं चले जाते तो तीनों में युद्ध हो जाता है। तो फिर सरस्वती गंगा को श्राप दे देती है, इसको लक्ष्मी को श्राप दे देती, फिर वो गंगा जो है वो सरस्वती को श्राप दे देती, फिर सरस्वती गंगा को श्राप दे देती, ऐसे तीनों एक दूसरे को श्राप दे देते। तो गंगा धरती पर आकर नदी बन जाती है, सरस्वती भी नदी बन जाती है। अंत सलीला कहा जाता है सरस्वती को, अंत सलीला अर्थात गुप्त रूप से बहने वाली, अंदर ही अंदर बहती है। और उसका मिलन फिर उधर प्रयाग में होता है गंगा और जमुना के साथ सरस्वती का, पर वो भी फिर बीच में लुप्त हो गई। तो अभी ऐसा माना जाता है वो जमुना के साथ में विलीन हो जाती है, पर दिखती नहीं, गुप्त है। तो ऐसी जबरदस्त और भी बहुत सारी कहानी है, ये एक कहानी है। हाँ तो एक गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नाम रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनस्थापना करते हैं, इसलिए उनको जगत के अलौकिक मात पिता कहा जाता है। उसको उसका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है, इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं। परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो कि वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। तो सरस्वती का एक गायन तो नदी के रूप में है, फिर नवरात्रि और रात्रि जागरण, विद्या की देवी, वाणी की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, कला की देवी, संगीत की देवी, सब सरस्वती के लिए ही है। तो नवरात्रि और रात्रि जागरण, जगराता कहा जाता है उसे, आज तेरा जगराता माता। तो जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलियुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में मनुष्य भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देवपद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमपिता शिव के कलियुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्योहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, कई लोग 4 बार भी कहते हैं, 4 बार भी कहते हैं, 10 नवरात्रि और 10 दिन। भक्तों का रात्रि जागरण करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अज्ञान की कुंभकर्णीय निद्रा से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्तजन ना तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते और ना ही इन्हें इससे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेतायुगी श्री सीता इत्यादि राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती तथा अन्य संगम योगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगाते और भक्तों की जो भीड़ वहां होती है, ऐसी बात राज राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञानामृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फल स्वरूप ही तो ये शक्तियां भविष्य सतयुगी सतयुग त्रेता में राज राजेश्वरी बनती है। अभी है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, अभी है, फिर बनती है योग योगेश्वरी, और फिर बाद में बनती है राज राजेश्वरी। आप देखेंगे कि भक्त लोग राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वो धन आयु भाग्य संतान इत्यादि सब कुछ मांगते हैं। इसकी भी एक कहानी है, तीन देवियों में एक बार और लड़ाई हो गई थी, लक्ष्मी सरस्वती और शिव की जो शक्ति है वो
पार्वती।
पार्वती, पार्वती शक्ति स्वरूप है। तो सरस्वती कहती है कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में। नहीं, नारद लगाता है तीनों में लड़ाई एक बार। वो जाता है ब्रह्मा के स्थान पर और कहता है कि इस संसार में वाह, यहाँ तो जैसे ऐसे लग रहा है आपके महल में जैसे लक्ष्मी आ गई, जानबूझ के कहता है, इतना इतना धन वैभव। तो बोलते लक्ष्मी का नाम तुम यहाँ क्यों ले रहे हो? तो बोलते लक्ष्मी तो श्रेष्ठ है संसार में। तो बोलते लक्ष्मी कहाँ से, धन कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो वो कहती है कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। वो कहती मैं संसार में जाऊंगी, एक ऐसे गूंगे व्यक्ति को चुनूंगी और उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि बना दूंगी। तो फिर ये बात सुनकर वो उधर जाता है विष्णु के पास, ये बताने के लिए जानबूझकर। और फिर उधर बताता है कि देवी तो चली गई है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, कौन कहता है, धन तो कुछ महत्व नहीं है धन का। तो वो वहां लक्ष्मी होती है, वो बोलती है ऐसे कैसे कहते हो, बिना धन के तो कुछ भी नहीं है संभव, बिना धन के तो ज्ञान क्या काम का। तो बोलते मैं भी धरती पर जाऊंगी, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ूंगी कि जो अकिंचन निर्धन है एकदम विपन्न, उसको संपन्न बना दूंगी। तो वो भी जाती है। फिर ये खबर लेकर नारद उधर पहुंचता है शिव के निवास पे और उधर कहता है ये दोनों तो चली गई, शक्ति का तो कुछ महत्व ही नहीं है। तो कहती है मैं भी अब ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो एकदम ही बलहीन, उसमें इतनी शक्ति भर दूंगी कि ये दोनों, वो कवि और ये जो निर्धन, वो उसके चरणों में गिर जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी कहानियां फिर है, लंबा कुछ याद नहीं मुझे। तो
देवियों की लड़ाई की
देवताओं की ज्यादा है, देवियों की भी है, देवियों की ईर्ष्यावश है, देवियों की देवताओं की भी लड़ाते हैं। राम की भी लड़ाई दिखाई कभी, राम और शिव की लड़ाई, शिव अर्थात शंकर की घमसान लड़ाई हो जाती है एक बार दोनों की। तो उनके जो शिव के बंदर और इसके गण, उन्होंने उनको उनकी भी लड़ाई हो जाती है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, पर ये लड़ते ही रहते हैं, ऐसे भी दिखाया हुआ है। ऐसी विभिन्न बाबा कहते हैं अगड़म बगड़म, जितने ज्यादा शास्त्र खोलोगे पुराण, उसमें और नई नई कथाएं, और नई नई कथाएं मिलेगी। तो सब यहाँ का है, यादगार उधर गया है। तो लक्ष्मी से धन मांगते हैं, पर जगदम्बा से सब कुछ मांगते हैं, धन भी मांगते हैं, आयु भी मांगते हैं, भाग्य मांगते हैं, संतान इत्यादि। वास्तव में माँ अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त करने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उससे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होती है। इसलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। आज तो मनुष्य को संगम युग की ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेतायुगी राज राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्त लोग जैसे परमात्मा शिव को अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ इत्यादि अनेक कर्तव्यवाचक नामों से याद करते, उसी रीति उन्होंने जगत जननी माँ को श्री अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम दिए। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने, दुर्गुण तो हम लोग कहते हैं दुर्ग शब्द से, दुर्ग दुर्ग अर्थात फोर्ट, किला, क्योंकि उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अथवा किले की तरह इतना मजबूत बना दिया था कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जब जाते थे तो लज्जा महसूस करते थे और झट नतमस्तक होते थे। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते। माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया है क्योंकि उन्होंने काली क्यों कहते हैं जबान ऐसी बाहर उसमें से रक्त टपकते हुए दिखाते है, दिखाते हैं ना? इस क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य से उन्होंने उनके विकारों की बलि ली थी, परंतु आश्चर्य भक्तों की बुद्धि पर वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात मूर्त माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है, बलि देते हैं ना, देवी को प्रसन्न करने के लिए देते हैं कि स्व के स्वयं के सुखों के लिए देते हैं? किसके लिए देते हैं? सिद्धि के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे वो बंगाल में जब रहते थे तो एक व्यक्ति एक भक्त था जो हर साल देवी काली माँ के मंदिर में बलि चढ़ाता था। कई सालों तक वो बीच में आया ही नहीं और एक दिन अचानक आ गया। तो रामकृष्ण ने उसे पूछा कि क्यों भाई, क्यों तुम्हारी भक्ति कम हो गई क्या, हर साल बलि चढ़ाते थे इस बार आए नहीं? तो बोले क्या करूं, दांत अभी है ही नहीं सारे दांत गिर गए तो कहां से बलि चढ़ाएंगे दांत भी तो मजबूत चाहिए ना नहीं तो फायदा क्या बलि चढ़ाने का। तो माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसलिए उनको शीतला सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्म ग्लानी का है, वर्तमान समय अति धर्म ग्लानी का समय है। धर्म ग्लानी की निशानियां वो गीत है पूरा एक, कौन सा? ओ जी रे रामचंद्र कहे गए सिया से, उसमें पूरे कलयुग ऐसा कलयुग आएगा हंस चुकेगा था ना मोती। हाँ तो उसमें धर्म ग्लानी की बहुत सारी बातें लिखी गई है। हाँ ऐसे होगा वैसे हो गया वैसा हो गया, बहुत सारी उसमें निशानियां दी है। तो वर्तमान समय अति धर्म ग्लानी का समय, देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। किसी के पास देवी देवताओं का ज्ञान नहीं है, उसके बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई है। कई पुस्तकों ने तो इस पर झूठा कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी, शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए, ये भी दिखाया है, कथा है। एक जगह तो पुत्री भी दिखाया उसके मुख से निकली हुई, पर एक जगह ये भी दिखाया वो उससे ही मोहित हो गए। वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उसकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। क्योंकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नवनिर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है, इस नाते से वे सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई मुस्लिम आदि धर्मों के लोग भी इन्हें क्या कहते हैं, एडम एंड ईव, आदम और बीवी इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में हुआ मानते हैं। परंतु उनकी इसके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब भारतवासी ही उन अलौकिक मात पिता के बारे में भूल चुके हैं तो यहाँ बाद में आने वाले धर्म के लोगों को क्या दोष दिया जा सकता है? सबसे ज्यादा धर्म ग्लानी किसने की है? भारत वालों ने। भारत ही महान है, भारत ही संपूर्ण पवित्र है, तो भारत से ही सबसे पहले पतित जो बना भारत ही बना। द्वापर से अगर देखा जाए तो सारे काम शास्त्र और सब इधर ही लिखे गए। विदेश में तो अभी अभी ये सब इतना बड़ा है, अभी 100-150 साल में। विदेश में इतना नहीं था, हम कहते हैं कि विदेश में तो काम विकार ज्यादा इधर कम है, परंतु वो अभी अभी फ्राइड का जब से सिद्धांत निकला सिगमंड फ्राइड का, तब से वो सब हुआ। परंतु भारत में तो तब से है, सारे पुराणों में वही लिखा हुआ है। महाभारत में शुरुआत से लेके अंत तक, शांतनु से लेके तो गंगा और वो सारे जो भी है उसमें, अंबा अंबा अंबिका अंबालिका, उसके दो पुत्र, वो सब 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 व्यास सत्यवती, पूरा पतन ही पतन है सब जगह। तो उनको क्या दोष लगाया जा सकता है बाकी धर्म वालों का? सारी बाबा ने कहा देवी देवता वाम मार्ग में गए, विदेश वाले वाम मार्ग में नहीं गए, इधर जो देवी देवता थे वो वाम मार्ग में, सबसे ज्यादा पतित वही बने। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहु पूर्व की भांति रचा हुआ। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर ये जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई सरस्वती गुप्त जो ठहरी। अब हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी इस अलौकिक माता जी ही की मुख वंशावली ज्ञान संतान है। अभी आगे से अनुभव है सारे, तो कौन 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 से अनुभव पड़ेगा? नहीं ये तो पढ़ना है खाली, इसमें कुछ ज्यादा वो विस्तार की बात नहीं है। तो सबसे पहले है जगदीश भाई, नहीं ये जो एकदम जाने पहचाने नहीं है उनको छोड़ देते, जगदीश भाई, सुशील भाई कल, उसके बाद है शांतामणि दादी, चिमन भाई, ठीक है नेक्स्ट, प्रकाशमणि दादी, कौन, कोई भी वॉलेंटियर नहीं, मंजू बहन, प्रकाशमणि दादी, अनुभव पढ़ना है खाली, तीसरा दिन। उसके बाद जानकी दादी, कुमुद बहन, निर्मल शांता दादी, नागेश भाई, ये पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। मुरलिया पढ़ना आसान है क्योंकि इसके चंद्रमणि दादी, किसने देखा है चंद्रमणि दादी को? नहीं, जो उनका हो गया, हाँ पढ़ेंगे, सुधा माता हाँ ना बहुत बड़ा है फिर हृदय, हाँ नहीं, हाँ निर्मल शांता दादी का आप पढ़ो, नहीं चंद्रमणि दादी का बड़ा है, सुधा माता को थोड़ा छोटा वाला देते हैं। हृदय पुष्पा दिद्दे, नहीं हृदय पुष्पा नहीं, ये गुलजार दादी का छोटा सा है, ठीक है गुलजार दादी का एक पेज बस यहाँ तक, फिर आगे का बाद में। तो सुशील भाई, जगदीश भाई, फिर शांतामणि दादी, फिर प्रकाशमणि दादी, फिर जानकी दादी, फिर निर्मल शांता दादी, फिर चंद्रमणि दादी और गुलजार दादी, यहाँ तक, फिर बाद में देखते हैं। ओम शांति।